नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार, इतिहास नवम पेपर के अंतर्गत आज पैलेस्टाइन में मैंडेट 1919 से 1948 के मध्य नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। मैंडेट की स्थापना। पैलेस्टाइन में मैंडेट की स्थापना ऑटोमन साम्राज्य के सीरिया प्रांत के दक्षिणी हिस्से में स्थित जेरूसलम के संजक को सीरिया से पृथक करके किया गया। इस क्षेत्र का व्यापक सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक महत्व था। ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ अनेक वर्षों से भारतीय साम्राज्य के स्थल मार्ग का अन्वेषण कर रहे थे। वस्तुतः लॉर्ड किचनर ने इस दिशा में कदम भी उठाया था। स्वेज नहर पर ब्रिटिश आधिपत्य की सुरक्षा के लिए भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त जेरूसलम ईसाइयों, यहूदियों एवं मुसलमानों के लिए एक पवित्र धार्मिक केंद्र था। इस क्षेत्र में बैथलेहम, जाफा, नजारेथ आदि पवित्र स्थान थे तथा इसी के लिए मध्य युग में अनेकों धर्म युद्ध हुए थे तथा 19वीं सदी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। ऐसी अवस्था में युद्धकाल में ही ब्रिटेन ने इस क्षेत्र में प्रभुत्व कायम करने के लिए दांव पेच लगाए। भावी क्षेत्रीय विभाजन के लिए जब मित्र राष्ट्रों में गुप्त वार्तालाप आरंभ हुए तो ब्रिटेन ने जेरूसलम में एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय शासन तथा सीरिया पर आधिपत्य की मांग की। अतः साइकस पाइकट समझौते के अनुसार सीरिया एवं लेबनान पर फ्रेंच आधिपत्य की व्यवस्था की गई, किंतु जेरूसलम को उससे पृथक रखकर वहां अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम करने की योजना बनाई गई। परंतु ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इस क्षेत्र में पूर्ण आधिपत्य के इच्छुक थे, अतः उन्होंने यहूदियों के राष्ट्रीय आवास आंदोलन को मान्यता दी एवं 1977 ईस्वी में ब्रिटिश परराष्ट्र सचिव बालफोर ने पैलेस्टाइन में यहूदियों के लिए राष्ट्रीय आवास स्थापित करने की नीति की घोषणा कर दी। इस प्रकार इस घोषणा द्वारा ब्रिटिश कूटनीति को दोहरी सफलता प्राप्त हुई। एक ओर इससे विश्वव्यापी यहूदियों की कृतज्ञता प्राप्त हुई तथा दूसरी ओर पैलेस्टाइन में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापना अवश्यंभावी हो गया। यहूदी आंदोलन एवं पैलेस्टाइन की समस्या का उदय। पैलेस्टाइन से यहूदियों का संबंध प्राचीन काल से ही था। आरंभ में यहूदियों ने पैगंबर मूसा के नेतृत्व में मिस्र के बंधन से छुटकारा पाकर पैलेस्टाइन में आवास ग्रहण किया था, परंतु रोमन शासनकाल में इन पर भयानक अत्याचार हुए और इन्होंने अन्य देशों में शरण ली और प्रायः सारे यूरोप में फैल गए। ये अध्यवसायी एवं परिश्रमी थे, अतः ये व्यापार एवं धनोपार्जन में सर्वत्र सफल रहे। फलतः स्थानीय जनता के बीच ये अप्रिय सिद्ध हुए। अनेक देशों में सरकारी तौर पर इन्हें नष्ट किया गया। 19वीं सदी में रूस ने पोग्रोम की नीति अपनाकर इनका दमन किया। यदा कदा अन्य यूरोपीय देशों में भी इस पर अत्याचार होते रहे। ऐसी अवस्था में भी यहूदी अपने को एक राष्ट्र मानते रहे और उस दिन का इंतजार करते रहे जबकि पुनः इन्हें राष्ट्रीय आवास प्राप्त हो। 19वीं सदी में पैलेस्टाइन में बाहर से कुछ यहूदी आकर बसे तथा उन्होंने मिल्लत संगठन कायम कर अपना परंपरागत धार्मिक पद्धति को जारी रखा। इस काल में मॉरिस हिर्स्क नामक यहूदी नेता ने यहूदी औपनिवेशीकरण समाज की स्थापना कर पैलेस्टाइन में यहूदियों के सामूहिक समुदाय रूप में बचने पर जोर दिया तथा अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर इसे संगठित किया। फलतः 19वीं सदी के अंत तक रूस, गैलिसिया, लिथुआनिया, रोमानिया आदि देशों से जाकर बहुत से यहूदी पैलेस्टाइन में बस गए तथा जुदिया, समरिया एवं गैलिली में इनके केंद्र कायम हो गए। थियोडोर हल्स और विश्व यहूदी संगठन 1896 से 1908 ईस्वी के मध्य। इस आंदोलन को सर्वाधिक प्रोत्साहन थियोडोर हल्स नामक एक ऑस्ट्रियन यहूदी ने दिया। 1896 ईस्वी में यहूदी राज्य नामक एक पुस्तक में इनकी समस्याओं का जिक्र किया गया तथा 1897 ईस्वी में डी वेल्थ नामक साप्ताहिक पत्र का आरंभ किया गया। इसी साल उन्होंने स्विट्जरलैंड के बेस्ल नामक स्थान में विश्व यहूदी सम्मेलन का आयोजन किया। इसने एक विश्व यहूदी संगठन की स्थापना की तथा पैलेस्टाइन में यहूदियों के लिए राष्ट्रीय आवास कायम करने का प्रस्ताव पास किया। थियोडोर हल्स नवीन संगठन के सभापति निर्वाचित हुए। उन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय एवं उसके मित्र जर्मन सम्राट कैसर से पैलेस्टाइन में यहूदियों के लिए राष्ट्रीय आवास प्राप्त करने की चेष्टा की, परंतु इनमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इस समय ब्रिटेन ने अफ्रीका में उगांडा प्रदेश में यहूदियों को बसाने का प्रस्ताव रखा, परंतु 1904 में विश्व यहूदी संगठन ने इसे अस्वीकृत कर दिया एवं पैलेस्टाइन ही उनका चरम लक्ष्य बना रहा। 1904 ईस्वी में हल्स की मौत हो गई, परंतु इससे आंदोलन रुका नहीं अपितु पश्चिमी देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका के यहूदियों में इस आंदोलन ने काफी जोर पकड़ा। अब उन्होंने एक यहूदी राष्ट्रीय कोष और पैलेस्टाइन स्थापना कोष की स्थापना कर धन इकट्ठा किया और जमीन खरीदकर यहूदियों को पैलेस्टाइन में बसाने का उद्योग करने लगे। इस दिशा में उन्होंने जर्मन सहानुभूति हासिल करने का प्रयास किया एवं टर्की के तरुण तुर्क शासकों के समक्ष अपनी मांग रखी, परंतु पहले की तरह इस प्रयास में उन्हें असफलता ही प्राप्त हुई। प्रथम महायुद्ध के आरंभ में जब टर्की युद्ध में कूद पड़ा तो कतिपय यहूदी नेताओं ने मित्र राष्ट्रों को समर्थन प्राप्त कर अपनी योजना को कार्यान्वित करने की चेष्टा की। इस दिशा में ब्रिटेन के यहूदी नेता डॉक्टर चाइम ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। डॉक्टर चाइम बेजमान और बालफोर घोषणा 2 नवंबर 1917 ईस्वी। डॉक्टर बेजमान मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्राध्यापक थे तथा युद्धकाल में इन्होंने मित्र राष्ट्रों को मदद देने का आह्वान किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक उपयोगी रासायनिक पदार्थ की नई उत्पादन विधि का आविष्कार कर ब्रिटेन के युद्धकालीन उद्योग को सहायता पहुंचाई थी। इन्होंने ब्रिटिश शासकों के सामने यहूदियों की समस्याओं एवं मांगों को रखा, परंतु आरंभ में उन्हें असफल होना पड़ा और ब्रिटिश प्रधानमंत्री एस्क्विथ ने इनकी मांगों को नामंजूर कर दिया। परंतु ब्रिटेन में अनेक यहूदी उच्च पदों पर थे तथा उनमें सर हर्बर्ट सैमुएल, लॉर्ड रीडिंग, एडविन मॉन्टेग्यू आदि प्रमुख थे। अतः 1916 ईस्वी में जब लॉयड जॉर्ज का मंत्रिमंडल बना तो उसने इस प्रश्न पर पूर्ण सहानुभूति से विचार किया एवं सर मार्क साइक्स को यहूदियों से वार्तालाप करने के लिए नियुक्त किया। वास्तव में लॉयड जॉर्ज पैलेस्टाइन को ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा की पंक्ति में एक अनिवार्य कड़ी मानता था तथा स्वेज नहर की सुरक्षा के लिए यहाँ ब्रिटिश प्रभाव कायम रखना आवश्यक समझता था। इसके अतिरिक्त विश्वव्यापी यहूदी संघों को युद्धकाल में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में रखने के लिए तथा रूसी साम्यवादी यहूदी नेताओं को युद्ध में शामिल रखने के हेतु भी यहूदियों की मांगों को स्वीकृत करना आवश्यक था। ऐसी अवस्था में ब्रिटिश शासकों ने यहूदियों से बातचीत कर उनके राष्ट्रीय आवास के निर्माण का निर्णय किया और यहूदी नेताओं ने भी वादा किया कि वे पैलेस्टाइन में ब्रिटिश संरक्षित शासन कायम करने का आंदोलन करेंगे। तत्पश्चात ब्रिटेन ने इस नीति पर फ्रेंच सरकार एवं अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन की भी स्वीकृति प्राप्त कर ली। अंत में ब्रिटिश पर राष्ट्र सचिव आर्थर जेम्स बालफोर ने 2 नवंबर 1917 ईस्वी को एक घोषणा की जिसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार पैलेस्टाइन में यहूदियों के लिए राष्ट्रीय आवास की स्थापना को सहानुभूति की नज़र से देखती है तथा इसे कार्य रूप में लाने की पूर्ण चेष्टा करेगी, परंतु साफ समझा जाए कि पैलेस्टाइन के गैर यहूदी जातियों के राजनीतिक एवं धार्मिक अधिकारों को हानि पहुंचाने वाला कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा और अन्य देशों की यहूदियों के राजनीतिक अधिकार एवं स्थिति पर आघात नहीं पहुंचाया जाएगा। His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of the object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. यह घोषणा आरंभ में ब्रिटिश यहूदी धनपति बैरन रॉथचाइल्ड के पास दिए गए पत्र का अंश था, परंतु शीघ्र ही इसे सरकारी नीति के रूप में घोषित कर दिया गया और फ्रेंच तथा अमेरिकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई। इसकी खबर जब नेता शरीफ हुसैन को मिली तो उसने इसके स्पष्टीकरण की मांग रखी। अतः ब्रिटिश सरकार ने डेविड जॉर्ज होगार्थ को उसके पास जनवरी 1918 ईस्वी में भेजा। इसने शरीफ हुसैन को आश्वासन दिया कि यहूदियों को पैलेस्टाइन में अरबों की राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखकर ही बसने दिया जाएगा। ऐसी अवस्था में शरीफ हुसैन ने भी इसे मान्यता दे दी। इस काल में बेजमान ने भी कैरो तथा सीरिया की यात्रा की एवं अरबों की आशंकाओं को निर्मूल घोषित किया। इस प्रकार बेजमान को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई तथा पैलेस्टाइन में यहूदी राष्ट्रीय आवास की स्थापना की भूमिका निर्मित हो गई। पैलेस्टाइन समस्या का उदय। युद्ध समाप्ति के समय सारा भूमध्य सागर तथा ईरान के बीच एक अरब क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आ गया था। इस क्षेत्र में अरबों ने स्वाधीन अरब राज्य निर्माण करने की कल्पना की थी, परंतु इस कल्पना को मित्र राष्ट्रों की गुप्त संधियों के जाल में जकड़ दिया गया। नवंबर 1918 ईस्वी में जब फैसल ने ब्रिटेन की यात्रा की तो ब्रिटिश दबाव में आकर उसने बेजमान से एक समझौता कर यहूदियों की राष्ट्रीय मांगों को मान्यता दे दी। इसका परिणाम यह हुआ कि 25 अप्रैल 1920 को जब सैन रेमी सम्मेलन ने पैलेस्टाइन में ब्रिटिश मैंडेट कायम किया तो ब्रिटेन को बालफोर घोषणा को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी दे दी गई। यहूदियों की सुविधा के लिए एक एजेंसी की स्थापना की गई जो विश्व यहूदी संगठन का प्रतिनिधित्व करती थी। ब्रिटिश शासकों को इस एजेंसी के सहयोग से शासन व्यवस्था एवं आवास का प्रबंध करना था। इस एजेंसी के सभापति डॉक्टर वेजमान एवं कार्यकारिणी के प्रधान डेविड बैन गुरियन थे। अरबों का ऐसा कोई संगठन नहीं था। उनकी एक मुस्लिम काउंसिल थी जो मुख्यतः धार्मिक कार्यों की देखरेख करती थी। अरब में इस काल में भीषण असंतोष फैला था। उनकी आशाएं धूल में मिल गई थी तथा अरब स्वतंत्रता मृग मारीचिका सिद्ध हो रही थी। उधर यहूदियों में भीषण उत्साह था। वेजमान घोषित कर दिया था कि यहूदियों का उद्देश्य पैलेस्टाइन को एक यहूदी देश बनाना है, जिस अर्थ में अमेरिका अमेरिकनों का है तथा ब्रिटेन ब्रिटिश लोगों का है। 1919 ईस्वी में पैलेस्टाइन में यहूदियों की संख्या सिर्फ 55,000 थी, जो आबादी का 8% थी, जबकि अरब 90% थे। इसके अतिरिक्त ईसाइयों को भी यहूदियों का आगमन अखरता था। शनह शनह यहूदी भारी तादाद में बाहर से आने लगे तथा उनकी संख्या बढ़ने लगी। फलतः अरबों को अपनी जमीन एवं घरबार से हटना पड़ा। ब्रिटिश सरकार यहूदियों का पक्ष ले रही थी। यहूदी संपन्न एवं शिक्षित थे तथा अरब निर्धन निरक्षर निर्धन एवं पिछड़े थे। इससे अरबों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकी। फलस्वरूप अरबों ने विद्रोह एवं मारकाट का सहारा लिया और यहूदियों ने उसका बदला लिया। ब्रिटिश शासक इस समस्या की गंभीरता को आरंभ में हृदयंगम नहीं कर सके। अतः पैलेस्टाइन में ब्रिटिश शासनकाल का इतिहास बर्बादी, तबाही एवं मारकाट का इतिहास है। एक इतिहासकार ने इसे सबसे बदनाम एवं सर्वाधिक मध्यदेशीय प्रयास कहा है। मैंडेट का आरंभ 25 अप्रैल 1920 को जब सुप्रीम काउंसिल ने पैलेस्टाइन को ब्रिटेन के हाथों सौंप दिया तो वहां पर सैनिक शासन का अंत कर असैनिक शासन कायम किया गया और प्रथम ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर हर्बर्ट सैमुअल ने 1 जुलाई 1920 ईस्वी को प्रशासनिक भार संभाला। इन्होंने अपने उत्तरदायित्व के पालन करने में देर नहीं लगाई तथा सितंबर महीने में बाहर से आने वाले यहूदियों की प्रथम वार्षिक किस्त की 16,500 संख्या निश्चित की। इस प्रकार प्रतिवर्ष उनकी एक निश्चित संख्या आकर बसने लगी और उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होने लगी। सैमुअल ने एक काउंसिल की स्थापना की जिसमें 22 सदस्य रखे गए। इसमें 8 मुसलमान, 2 यहूदी और 2 ईसाइयों का स्थान दिया गया और 10 सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था की गई। परंतु अरबों को इस व्यवस्था से संतोष नहीं था क्योंकि इस व्यवस्था में गैर अरब बहुमत कायम रहता था। अतः अरबों ने एक प्रतिनिधि संसदीय सरकार की स्थापना, यहूदियों के आगमन पर रोक तथा यहूदियों के अरब से जमीन खरीदने पर प्रतिबंध की मांग की और 1921 ईस्वी में एक भीषण विद्रोह कर दिया। इससे पैलेस्टाइन में आतंक छा गया और धनजन की बहुत हानि हुई। इसी अवस्था में तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेश सचिव विंस्टन चर्चिल ने जून 1922 ईस्वी में एक श्वेत पत्र का प्रकाशन कर ब्रिटिश नीति की घोषणा की। इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश नीति के आधार पैलेस्टाइन में यहूदी राज्य कायम करना नहीं है और वहां पर उसके आवास की व्यवस्था भी उसी हद तक करनी है जहां तक उस देश की आर्थिक अवस्था बर्दाश्त कर सके। इस घोषणा को यहूदियों ने स्वीकृत किया परंतु इसमें अरबों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। यहूदियों के आगमन पर भी रोक नहीं लगाई गई तथा 1927 ईस्वी तक उनकी संख्या 150,000 हो गई। अब प्रतिवर्ष नए यहूदी आकर बसने लगे। वे काफी संगठित थे तथा विश्व यहूदी संघ की दौलत उनके पीछे थी। निर्धन अरब अपनी जमीन एवं जायदाद से धीरे धीरे वंचित होने लगे। इससे अरबों को यह चिंता होने लगी कि यहूदी सारी जमीन के मालिक बन बैठेंगे और वे बिना घर बार के हो जाएंगे। इससे उनमें रोष की भावना बढ़ती गई तथा अगस्त 1929 ईस्वी में दोनों जातियों के बीच एक भीषण संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष का आरंभ जेरूसलम स्थित एक पवित्र दीवार के नजदीक पूजा को लेकर हुआ। यह दीवार एक यहूदी मंदिर का भग्नावशेष तथा एक मुस्लिम मस्जिद का अंग था, अतः दोनों इसे पवित्र मानते थे और इसके लिए झगड़ पड़े। इसमें दोनों तरफ से 100 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। कितनी बस्तियां जलकर खाक
हो गई और यह विद्रोह जेरूसलम के अतिरिक्त जाफा आदि शहरों में भी फैल गया और अंत में उसे ब्रिटिश वायुसेना की मदद से दबाया जा सका। इसके बाद पवित्र दीवार के अस्थायित्व की जांच के लिए राष्ट्रसंघ ने मई 1930 ईस्वी में एक जांच कमीशन की नियुक्ति की तथा दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन होप सिंपसन को पैलेस्टाइन की समस्या की जांच के लिए नियुक्त किया। सिंपसन रिपोर्ट तथा उसकी प्रतिक्रिया। सर जॉन सिंपसन ने पैलेस्टाइन की समस्या को आद्योपांत जांच की तथा अपने रिपोर्ट अक्टूबर 1930 में पेश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने समस्या के मौलिक कारणों की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया तथा यह घोषित किया कि यहूदियों के अबाध आगमन से अरबों की भीषण क्षति हुई है तथा उनकी 2,50,000 एकड़ कृषि योग्य भूमि यहूदियों के हाथ में चली गई है। उन्होंने अरबों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए यहूदियों के आगमन तथा भूमि बिक्री पर प्रतिबंध पर जोर दिया। इस पर ब्रिटिश सरकार ने एक नवीन श्वेत पत्र का प्रकाशन कर अपनी पैलेस्टाइन संबंधी नीति में परिवर्तन का जिक्र किया। इसमें अरबों की नई आशाएं बंधी, परंतु विश्व यहूदी संघ ने बालफोर घोषणा की दुहाई देते हुए ब्रिटिश सरकार को यहूदी राष्ट्रीय आवास की स्थापना की शर्तों को पालन के लिए बाध्य किया। यहूदियों के समर्थक ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में भरे हुए थे और प्रचार के जबरदस्त साधन उनके पास मौजूद थे, अतः ब्रिटिश सरकार उनकी मांगों की अवहेलना नहीं कर सकती थी। इसके अतिरिक्त 1930 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण यहूदियों की भारी संख्या पैलेस्टाइन में आने लगी। इसके बाद 1933 ईस्वी में जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ और उसने यहूदियों पर अत्याचार आरंभ किए। परिणामस्वरूप 1935 ईस्वी में ही 60,000 से अधिक यहूदी पैलेस्टाइन पहुंचे और उनकी आबादी 3,00,000 से अधिक हो गई। ऐसी अवस्था में अरबों ने एक पैलेस्टाइन अरब सम्मेलन एवं अरब उच्चतर समिति की स्थापना की। प्रसिद्ध अरब नेता जेरूसलम के मुक्ति अजहमीन अल हुसैनी ने अरबों को आंदोलन के लिए प्रोत्साहित किया। अतः नवंबर 1935 ईस्वी में अरबों ने तत्कालीन ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर आर्थर वॉचॉप के समक्ष प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, भूमि कर पर प्रतिबंध तथा यहूदी आगमन के स्थगन की मांगें रखी। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने 28 सदस्यों की एक विधानसभा का प्रस्ताव रखा, जिसमें 5 सरकारी तथा 23 गैर सरकारी सदस्यों का स्थान रखा गया। इसके अतिरिक्त उसने एक ऑर्डिनेंस की चर्चा की, जिसके अनुसार अरबों द्वारा अपने घोषणा के लिए अपेक्षित भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा की गई। इसे अरबों ने स्वीकृत किया, परंतु यहूदियों ने अस्वीकृत कर दिया। फलतः यह प्रयास निष्फल रहा। इससे अरबों के में काफी असंतोष फैला। इनके बीच जर्मन एवं इटालियन प्रोपगंडा काफी जोर पर चल रहा था एवं मिस्र तथा सीरिया में भी राष्ट्रवादियों का भीषण आंदोलन चल रहा था। अतः अप्रैल 1936 ईस्वी में अरब असंतोष ने विस्फोट का रूप धारण किया। अरबों ने आप हड़ताल घोषित कर दी एवं गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। इस विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया तथा भारी संख्या में ब्रिटिश सेना इस क्षेत्र में भेजी गई। नवंबर 1936 ईस्वी तक यह विद्रोह क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया और प्रमुख अरब नेता कैद कर लिए गए तथा हज अमीन हुसैनी ने सीरिया भागकर जान बचाई। ऐसी अवस्था में ब्रिटिश सरकार ने समस्या के समाधान के लिए राजकीय कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन ने नवंबर 1936 ईस्वी में अपना कार्य आरंभ किया तथा जुलाई 1937 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राजकीय कमीशन रिपोर्ट, जुलाई 1937 ईस्वी। राजकीय कमीशन ने दोनों पक्षों के नेताओं से साक्षात्कार किया तथा अंत में उन्होंने अपना निर्णय पैलेस्टाइन के विभाजन के पक्ष में दिया। 1937 ईस्वी में यहूदियों की संख्या 4,00,000 के लगभग हो गई थी और ये आबादी में 34% हो गए थे। अतः कमीशन ने यह सुझाव दिया कि उत्तरी पैलेस्टाइन में जहां यहूदियों का बहुमत था, वहां एक यहूदी राज्य कायम किया जाए, जिसकी दक्षिण सरहद में मैगिडो निश्चित हो। जेरूसलम, नजारेत, गैलिली और बैतलहम आदि पवित्र तीर्थ स्थानों के लिए ब्रिटिश मैंडेट शासन को कायम रखने और जाफा के बंदरगाह एवं उससे संबंधित मार्ग क्षेत्र भी इसी में शामिल रखने पर जोर दिया गया। शेष क्षेत्र को ट्रांस जॉर्डन से मिलाकर एक संगठित अरब राज्य की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इस नई व्यवस्था की स्थापना के बाद विभिन्न इकाइयों के बीच संधि एवं राष्ट्रसंघ द्वारा मान्यता प्राप्त करने का भी जिक्र किया गया, परंतु इससे अरब तथा यहूदी दोनों असंतुष्ट थे। यहूदी जेरूसलम से अलग नहीं होना चाहते थे तथा नई व्यवस्था से जाफा का बंदरगाह एवं जॉर्डन के किनारे उनके जल विद्युत यंत्र और मुर्दा सागर से कोई भी संबंध सीधा संबंध नहीं रह जाता था और अरब क्षेत्र भी काफ़ी छोटा हो जाता था। अतः दोनों ने इसे अमान्य घोषित कर दिया और अरबों की तरफ से इराक ने राष्ट्रसंघ में इसका विरोध किया। अरबों ने अपने आतंकपूर्ण कार्यों को जारी रखा। ऐसी अवस्था में ब्रिटेन के अनुरोध से राष्ट्रसंघ में पैलेस्टाइन के विभाजन की योजना तैयार करने के लिए 1938 ईस्वी में नई कमीशन की नियुक्ति के लिए अध्यक्ष वुडहेड महोदय थे। इस कमीशन ने विभाजन के संबंध में एक वृहत मसौदा तैयार किया जिसे ब्रिटिश सरकार ने अव्यवहारिक समझकर नामंजूर कर दिया एवं फरवरी 1939 ईस्वी में अरब तथा यहूदी प्रतिनिधियों का एक गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया गया। लंदन सम्मेलन फरवरी मार्च 1939 और श्वेत पत्र 1 मई 1939 ईस्वी। लंदन सम्मेलन में दोनों दलों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त इराकी, मिस्र, सऊदी अरब, यमन तथा ट्रांस जॉर्डन से भी प्रतिनिधियों को नियंत्रित किया गया। परंतु अरबों में यहूदियों के प्रति भीषण घृणा थी तथा उन्होंने यहूदियों के साथ बैठने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने स्वतंत्र अरब राज्य की मांग रखी तथा यहूदी भी बालफोर घोषणा के कार्यान्वयन की दुहाई देते रहे। अतः यह सम्मेलन असफल रहा तथा मार्च में भंग कर दिया गया। इस समय यूरोप में युद्ध के बादल छाए रहे थे। जर्मनी अरबों के बीच ब्रिटिश विरोधी प्रचार कर रहा था। भावी युद्ध में अरब सहयोग का काफी मूल्य था। अतः 17 मई 1939 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र में पैलेस्टाइन संबंधी नीति की घोषणा की। इसके अनुसार उसने 10 साल के अंदर पैलेस्टाइन की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा तथा अगले 5 वर्ष के लिए आगंतुक यहूदियों की संख्या 75,000 अंतिम रूप से निश्चित कर दी गई। इसके बाद उनके आगमन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। भूमि बिक्री के लिहाज से पैलेस्टाइन को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया। प्रथम भाग में इसकी पूर्ण छूट रखी गई, दूसरे भाग में इसे नियंत्रित रखने की व्यवस्था की गई तथा तृतीय भाग में इस पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ब्रिटेन ने घोषणा की कि राजनीतिक दृष्टि से अब पैलेस्टाइन में अधिक यहूदियों का प्रवेश असंभव है। इस घोषणा ने यहूदियों पर वज्रपात कर दिया तथा राष्ट्रसंघ की मैंडेट कमीशन ने भी इसका विरोध किया। दूसरी ओर अरब भी इनसे पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए। ऐसी परिस्थिति में सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय महायुद्ध का आरंभ हो गया और एक नई राजनीतिक स्थिति कायम हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध और पैलेस्टाइन की समस्या 1939 से 1945 ईस्वी के मध्य। सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट से पैलेस्टाइन में सामरिक शांति उपस्थित हो गई। पैलेस्टाइन का सामरिक महत्व काफी व्यापक था, अतः यहां काफी संख्या में ब्रिटिश फौजों का जमाव हो गया और आतंकवादियों का कार्य मुश्किल हो गया। इसलिए युद्धकाल में अरब एवं यहूदियों ने पारस्परिक शांति की नीति अपनाई, परंतु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। युद्धकाल के आरंभ में सर्वत्र जर्मनी की विजय हुई और बाहर से काफी यहूदी पैलेस्टाइन आने लगे, परंतु 1940 ईस्वी में ही ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने जमीन की बिक्री एवं यहूदियों के आगमन को नियंत्रित कर दिया। इससे यहूदियों में काफी असंतोष था। यहूदियों ने इस काल में कई गुप्त आतंकवादी संगठन कायम किए जिनमें हगाना, इर्गुन, ज्वायम, लुयुमी तथा स्ट्रोंडल आदि प्रमुख थे। ये काफी संगठित थे तथा आरंभ में आत्मरक्षा के हेतु संगठित हुए थे। युद्धकाल में इन्हें नए नए आधुनिक अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए और इनकी शक्ति काफी बढ़ गई। ये यहूदियों पर लगे प्रतिबंध का जबरदस्त विरोध करते थे। इस काल में अमेरिका के यहूदियों का राजनीति में काफी प्रभाव था और वे यहूदियों के मांग के पक्ष में अमेरिका में आंदोलन कर रहे थे। 1942 ईस्वी में मध्य में जब नाजी पक्ष कमजोर दिखाई देने लगा तो डेविड बेन गुरियन ने 11 मई 1942 ईस्वी को न्यूयॉर्क में यहूदियों की एक सभा बुलाई तथा बाल्टीमोर योजना पेश किया। इसके अनुसार इन्होंने 3 उद्देश्य रखे: पैलेस्टाइन में यहूदी राज्य की स्थापना, एक यहूदी सेना का निर्माण तथा यहूदियों के पैलेस्टाइन में बसने की पूरी आज़ादी। इन मांगों को अमेरिकी यहूदियों ने मान लिया और बाद में विश्व यहूदी संघ के कार्यकारिणी समिति ने भी मान्यता दे दी। इस प्रकार यह यहूदियों की सरकारी मांग हो गई। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी इनके प्रति सहानुभूति दिखलाई। फलतः पैलेस्टाइन में प्रशासकीय नियंत्रणों के लिए यहूदियों ने ब्रिटिश अधिकारियों को दोषी ठहराया और उनके विरुद्ध आतंकवाद का सहारा लिया। जब ब्रिटिश अधिकारी ने अवैध यहूदी आगंतुकों पर रोक लगाई तो इन आतंकवादियों ने यहूदियों से भरे जहाज को समुद्र में ही डुबा दिया। इस प्रकार पात्रियाक को हैफा बंदरगाह के नजदीक एवं स्ट्रोमा को काला सागर में डुबा दिया गया। ऐसी अवस्था में 1943 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारियों पर यत्र तत्र आक्रमण होने लगे। ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर हैरोल्ड मैक माइकल पर बम फेंका गया तथा 2 नवंबर 1943 को कैरो स्थित ब्रिटिश राजदूत लॉर्ड मॉयन की हत्या कर दी गई। इसके अतिरिक्त पुलिस दफ्तर, रेलवे लाइनों तथा अन्य ऑफिसों पर आतंकवादियों ने आक्रमण किए और ब्रिटिश सेना के केंद्र किंग डेविड होटल को बम से उड़ा दिया गया। इस समय संयुक्त राज्य में यहूदियों का काफी राजनीतिक प्रभाव था। फरवरी 1944 ईस्वी में ही कांग्रेस में पैलेस्टाइन ने यहूदी राज्य कायम करने के लिए प्रस्ताव लाए थे। युद्ध की समाप्ति पर पूर्वी यूरोप के अधिकांश यहूदी एवं जर्मन कैद से मुक्त यहूदी पैलेस्टाइन में बसने की मांग करने लगे। संयुक्त राज्य के नए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यहूदियों के प्रति दिलचस्पी दिखाई और 31 अगस्त 1945 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली को 1 लाख यहूदियों को पैलेस्टाइन में शीघ्र बसाने की अपील की। ऐसी अवस्था में एटली ने एक संयुक्त एंग्लो अमेरिकी जांच समिति की स्थापना का प्रस्ताव रखा जिसमें दोनों देश मिलकर इस समस्या का निदान करें। एंग्लो अमेरिकी जांच समिति रिपोर्ट 20 अप्रैल 1946 ईस्वी। एंग्लो अमेरिकी समिति ने लंदन, वाशिंगटन, पैलेस्टाइन, जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया की यात्रा की, प्रमुख यहूदी एवं अरब नेताओं से वार्तालाप किया। इस समिति ने काफी छानबीन कर 20 अप्रैल 1945 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें 3 प्रमुख प्रस्ताव रखे गए। मैंडेट शासन को संयुक्त राष्ट्र अपने ट्रस्टीशिप शासन में प्रवर्तित करे। नाजी और फासिस्ट अत्याचार के शिकार 1 लाख यहूदियों को पैलेस्टाइन में बसने की अनुमति दी जाए और भूमि बिक्री पर प्रतिबंध खत्म कर दिया जाए। इन प्रस्तावों को कार्य में परिणित करने के लिए दोनों देशों ने उच्चाधिकारियों की एक कमीशन नियुक्त की। 31 जुलाई 1946 ईस्वी को इस कमीशन ने एक योजना प्रस्तुत की जिसे ग्राडी मॉरिसन योजना कहा जाता है। इसमें पैलेस्टाइन में यहूदियों एवं अरबों के एक संघात्मक सरकार की स्थापना एवं अरब सहमति के आधार पर यहूदियों के आवास का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव से यहूदियों को घोर निराशा हुई। दिसंबर 1946 ईस्वी में बैसल में विश्व यहूदी संघ के एक अधिवेशन में ब्रिटेन की काफी निंदा की गई। दूसरी ओर यहूदियों ने खुलेआम आतंक फैलाना आरंभ किया। इन्होंने कई सड़क पुल, रेलवे लाइन एवं दफ्तरों को बम से उड़ा दिया तथा अनेक ब्रिटिश सैनिकों एवं अधिकारियों की हत्या की। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश अधिकारियों ने यहूदी नेता शर्तूक एवं बर्नार्ड जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया, परंतु यहूदी दबे नहीं और अमेरिकी यहूदी संघ के सभापति डॉक्टर अब्बा हिलेल ने ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन चलाने का आह्वान किया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यहूदी अधिकारियों ने हैफा स्थित ब्रिटिश कार्यालय पर आक्रमण कर ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन ने 2 अप्रैल 1947 ईस्वी को पैलेस्टाइन का मामला संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख पेश कर दिया। संयुक्त राष्ट्र एवं पैलेस्टाइन समस्या 1947-48। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली की विशेष अधिवेशन ने 28 अप्रैल से 15 मई 1947 ईस्वी तक इस प्रश्न पर विचार किया और अंत में 11 देशों की एक कमेटी बनाई जिसे पैलेस्टाइन संबंधी विशेष संयुक्त राष्ट्र कमेटी, यूनाइटेड नेशनल स्पेशल कमेटी ऑफ पैलेस्टाइन कहा जाता है। इसमें कनाडा, स्वीडन, ग्वाटेमाला, यूगोस्लाविया, ईरान, भारत, नीदरलैंड, पेरू, उरुग्वे, चेकोस्लोवाकिया एवं ऑस्ट्रेलिया को रखा गया और इसकी अध्यक्षता स्वीडन को सौंपी गई। इस कमेटी ने पैलेस्टाइन की आर्थिक एकता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की शीघ्र स्थापना का प्रस्ताव रखा तथा बहुमत से पैलेस्टाइन के विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें अरब एवं यहूदी राज्य पृथक हो और जेरूसलम में अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण कायम हो। दूसरी ओर भारत, ईरान और यूगोस्लाविया ने यहूदी एवं अरब राज्यों के संघात्मक सरकार का प्रस्ताव रखा। काफी वाद विवाद के पश्चात 29 नवंबर 1947 ईस्वी को जनरल असेंबली ने बहुमत योजना को स्वीकार कर लिया तथा विजान के पक्ष में निर्णय दिया तथा विभाजन के पक्ष में निर्णय दिया। इसके अनुसार अरब राज्य का क्षेत्र पूर्वी एवं मध्य पैलेस्टाइन रखा गया। इसमें एस्ट्रेलॉन की घाटी से वीरशेवा तक का क्षेत्र और पश्चिमी गलीली एवं गाजा से लेकर लाल सागर तक भूमध्य सागर तट शामिल था। यहूदी राज्य में पूर्वी गैलीली, एस्ट्रेलॉन की घाटी, नजेब का अधिकांश भाग एवं हैफा से लेकर जाफा तक का भूमध्य सागरीय तट शामिल था। जेरूसलम, बेथलेहम एवं पड़ोसी क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत रखने की व्यवस्था की गई। ब्रिटेन ने 1 अगस्त 1948 ईस्वी में पैलेस्टाइन में अपने शासन के अंत करने की तिथि निश्चित की। अतः जनरल असेंबली ने घोषित किया कि ब्रिटेन के हटने के 2 महीने के अंदर पैलेस्टाइन में नई व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इसके लिए इसने पंचराष्ट्रीय कमीशन की नियुक्ति की तथा सुरक्षा परिषद को इसकी सहायता करने एवं शांति स्थापित रखने की जिम्मेवारी दी। इस प्रस्ताव को जनरल असेंबली ने 33-13 के बहुमत के से पास कर दिया तथा इसे रूस, फ्रांस एवं संयुक्त राज्य का समर्थन प्राप्त हुआ और ब्रिटेन ट्रस्ट रहा। इसके विरोधियों में अधिकांशतः अरब एवं एशियाई देश थे। पैलेस्टाइन का विभाजन। जनरल असेंबली ने विभाजन का निर्णय किया, परंतु बहुमत से प्रस्तावित होने पर भी जनरल असेंबली के प्रस्ताव को अरबों ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को कानूनी बंधन नहीं माना तथा 6 फरवरी 1948 ईस्वी को अरब उच्चतर समिति ने यह घोषित किया कि अरब क्षेत्रों में यहूदी राज्य स्थापित करने के किसी प्रयत्न का सशस्त्र विरोध किया जाएगा। इसके साथ अरबों ने एक सेना का संगठन कर यहूदियों पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटेन ने 1 जनवरी 1948 को ही घोषणा कर दी थी कि अरब यहूदी मतैक के नहीं रहने से वहां संयुक्त राष्ट्र के निर्णय को कार्य रूप देने में योगदान नहीं करेगा तथा 15 मई 1948 ईस्वी को ही अपना शासन समाप्त कर देगा, जिसके पहले पंचराष्ट्रीय कमीशन पैलेस्टाइन में घुसने नहीं देगा। ऐसी अवस्था में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप की स्थापना का प्रस्ताव रखा, परंतु जनरल असेंबली की विशेष बैठक ने 16 अप्रैल से 15 मई तक इस पर वाद विवाद करके भी कोई निर्णय नहीं लिया। अंत में उसने पैलेस्टाइन में एक मध्यस्थ की नियुक्ति का प्रस्ताव पास किया जो अरब यहूदियों के बीच शांति स्थापित कर सके। इसके साथ ही जेरूसलम में एक हाई कमिश्नर नियुक्त कर दिया, परंतु 14 मई 1948 ईस्वी को ब्रिटेन ने अपने मध्यादेश का अंत कर दिया और यहूदियों ने इस रोज तेल अवीव में अपने नए स्वतंत्र यहूदी राज्य इज़राइल की स्थापना की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस नवीन राज्य को शीघ्र ही मान्यता दे दी। इस प्रकार नवीन यहूदी राज्य का जन्म हुआ। अरब यहूदी युद्ध। इज़राइल के जन्म से अरब राज्यों में काफी क्षोभ फैला तथा शीघ्र ही सीरिया, लेबनान, ट्रांसजॉर्डन, इराक तथा मिस्र की फौजों ने नवीन राज्य पर आक्रमण कर दिया तथा पैलेस्टाइन के अरबों ने भी अपनी सेना सन्नद्ध की। इसके पीछे अरब संघ ने इज़राइल के नाश का आह्वान किया। इनकी सेना इज़राइल की सेना से कई गुनी अधिक थी, परंतु इज़राइल में नवीन जोश था तथा कई देशों से यहूदी नवयुवकों ने स्वयंसेवक के रूप में यहूदी सेना में भर्ती होना आरंभ किया। इसराइल का सेनापति याकूब दोरी भी एक अनुभवी सेनापति था। दूसरी ओर ट्रांसजॉर्डन की सेना का नेता जॉन ग्लब को छोड़कर अरबों के पास कोई भी कुशल सेनापति नहीं था तथा उनमें अच्छे प्रशिक्षण की कमी थी। मिस्र की सेना विशाल होते हुए भी भ्रष्टाचार के कारण बेकार थी, अतः युद्ध में अरबों को आशातीत सफलता नहीं प्राप्त हुई। इसी समय 20 मई 1948 ईस्वी को सुरक्षा परिषद ने काउंट बार्नाटोड नामक स्वीडिश रेडक्रॉस की स्थापना को पैलेस्टाइन में मध्यस्थ नियुक्त किया। इसने शांति लाने का प्रयास किया तथा 16 सितंबर 1948 ईस्वी को एक प्रस्ताव पेश किया जिसके अनुसार नजेब का क्षेत्र अरबों को देना निश्चित किया, परंतु यहूदियों ने 17 सितंबर को जेरूसलम में उसकी हत्या कर दी। ऐसी अवस्था में सुरक्षा परिषद ने इस कार्य पर डॉक्टर रॉल्फ बुंचे नामक एक अमेरिकी को नियुक्त किया। इसने रोड्स द्वीप में दोनों दलों के प्रतिनिधियों से युद्ध विराम के लिए वार्तालाप आरंभ किया तथा जनवरी और जुलाई 1949 ईस्वी के बीच इजराइल एवं अन्य देशों के बीच युद्ध विराम कराया, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि इजराइल की सीमा तथा क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। पैलेस्टाइन का 3/4 भाग इजराइल के कब्जे में आ गया, जिसमें उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी पैलेस्टाइन शामिल था। अरबों के हाथ के सिर्फ मध्य एवं पूर्वी भाग रहा, जिसमें ट्रांसजॉर्डन की फौजों ने अपने कब्जे में रखा तथा भूमध्य सागर के निकट गाजा का क्षेत्र मिस्र के कब्जे में बना रहा। इस तरह अरबों को इससे नुकसान ही हुआ और उनके क्षेत्र हाथ से निकल गए। युद्ध विराम के पश्चात भी कोई संधि नहीं हुई तथा इजराइल नए क्षेत्रों का मालिक बन बैठा। दूसरी ओर अरबों में मतैक्य नहीं रहा, मिस्र ने 20 सितंबर 1948 ईस्वी को गाजा में मुफ्ती के मातहत में पैलेस्टाइन की एक सरकार की घोषणा की, परंतु ट्रांसजॉर्डन ने नहीं माना तथा अपने अधीनस्थ केंद्रीय एवं पूर्वी क्षेत्र 1 दिसंबर 1948 को अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार पैलेस्टाइन में एक अरब राज्य का संगठन संभव नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त युद्धकाल में 10 लाख से अधिक अरब अपने घरबार से भगा दिए गए एवं शरणार्थी हो गए। दोनों ओर से युद्धकाल में निर्दयतापूर्वक कत्लेआम किया गया, जिसकी अमिट छाप रह गई। युद्ध से पहले अरबों की संख्या पैलेस्टाइन में 13,20,000 थी और यहूदी 6,40,000 थे, परंतु इसराइल की स्थापना से 70% अरब बेघरबार हो गए और इसराइल ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया। इस तरह अरबों ने जिस आशा से युद्ध छेड़ा था वह निराशा में परिणत हो गया और अरब क्षेत्र में एक ऐसे राज्य का उदय हुआ जो इनके बीच में फूरा बन गया। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।